بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتا، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے۔ آج آپ سورہ آلہ کی آیت کرمانک 1 سے 17 تک کی تلاوت اور اس کا انواد سنیں گے۔ قاری ہیں سورگی محمد صدیق منشاوی۔
بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتنت کرپاشیل اور دیاوان ہے، ہی پیغمبر اپنے سروچ پالنہار کے نام کا گنگان کیجئے، جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا، جس نے بھاگ نردھارت کیا پھر مارگ دکھایا، جس نے ونسپتی اگائی پھر اسے سوکھا اور کالا بنا دیا۔ پھر ہم آپ کو شیگر ہی اس پرکار قرآن پڑھائیں گے کہ پھر آپ بھولیں گے نہیں، سوائے یہ کہ ایشور ہی یہ چاہے کہ نسندیہ وہ ہر سپشٹ اور چھپی بات کو جانتا ہے، اور ہم آپ کو ہر بھلے کاری کے لیے تیار کر دیں گے۔ اتہ نصیحت کیجئے، یدی نصیحت لاپ پرد ہو، اور شیگری ایشور سے ڈرنے والا ویکتی نصیحت حاصل کر لے گا۔ किंतु अत्यंत दुर्भाग्य वाला उससे कतराएगा वही जो बड़ी आग में गिर पड़ेगा, फिर वो उसमें न तो मरेगा न ही जिएगा। निश्चित रूप से जिसने अपने आप को पवित्र बना लिया वो सफल हो गया, और जिसने अपने पालनहार के नाम का स्मरण किया फिर नमाज अदा की। नहीं, बल्कि तुम तो सांसारिक जीवन को प्राथमिकता देते हो, जबकि परलोक अधिक उत्तम और शेष रहने वाला है।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज बुधवार दय की 17, जमादुल अव्वल की 22 और जनवरी की 6 तारीख। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवेव में 41 मीटर बैंड बराबर 7445 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आ रहा होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराएगा। ऐसे में हमारे पते नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir, जबकि वेबसाइट का पता है pastoday.com/hi। श्रोताओ, हमारे आज के कार्यक्रम के रूपरेखा नोट कर लें। सबसे पहले आप सदा की भांति अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात दैनिक कार्यक्रम होगा राजनीतिक चर्चा, जिसके पश्चात आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम शौर्य गाथा, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आजकल। श्रोताओ, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप रेडियो तेहरान से समाचार सुनिए। मैं हूं मोहम्मद मेहदी। तो श्रोताओं, सबसे पहले पेश है मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति ने कहा है कि दुनिया में कोई भी ये न सोचे कि आर्थिक प्रतिबंध लगाकर वो ईरानी राष्ट्र को घुटने टेकने पर बाध्य कर देगा। ईरान ने कहा है कि भड़काऊ कार्रवाई से पूरा इलाका आग का गोला बन जाएगा। अगर परमाणु समझौते के सभी पक्ष अपने वचनों पर अमल करेंगे तो तेहरान पहली वाली हालत में दोबारा लौट आएगा। कड़ाके की सर्दी के बावजूद पाकिस्तान के हजारा समुदाय का प्रदर्शन जारी है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति ने कहा है कि दुनिया में कोई भी ये न सोचे कि आर्थिक प्रतिबंध लगाकर वो ईरानी राष्ट्र को घुटने टेकने पर बाध्य कर देगा। डॉक्टर हसन रूहानी ने निकट भविष्य में जो बाइडेन की सरकार की गतिविधियों के आरंभ होने की ओर संकेत किया और कहा कि अगर जो बाइडेन ने अपने वचनों का पालन किया तो ईरान का जवाब स्पष्ट है। उन्होंने सरकारी प्रतिनिधिमंडल की बैठक में कहा कि अगर अमेरिका ने अपने समस्त वचनों पर अमल किया तो ईरान भी अपने समस्त वचनों का पालन करेगा। उन्होंने कहा कि ईरानी राष्ट्र पूरी शक्ति के साथ अपने मार्ग को आगे जारी रखेगा, और जब भी सामने वाला पक्ष कानून के समक्ष नतमस्तक हो जाएगा हम उसका स्वागत करेंगे। राष्ट्रपति रूहानी ने ईरानी राष्ट्र को मिलने वाली ऐतिहासिक सफलताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया में कोई भी ये न सोचे कि आर्थिक प्रतिबंध लगाकर वो ईरानी राष्ट्र को घुटने टेकने पर बाध्य कर देगा। राष्ट्रपति रूहानी ने अपने भाषण के एक अन्य भाग में पिछले साल 8 जनवरी को तेहरान के समीप यूक्रेनी विमान की घटना की ओर संकेत किया और कहा, हताहत होने वालों के परिजनों से एक बार फिर क्षमा कीजिएगा। राष्ट्रपति रूहानी ने अपने भाषण के एक अन्य भाग में पिछले 8 जनवरी को तेहरान के समीप यूक्रेनी यात्री विमान की घटना की ओर संकेत किया और हताहत होने वालों के परिजनों से एक बार फिर सहानुभूति जताई और बल देकर कहा कि जो लोग यूक्रेन के यात्री विमान के दुर्घटना के कारक हैं, उन पर न्यायपूर्ण ढंग से मुकदमा चलाया जाएगा। राष्ट्रपति रूहानी ने इसी प्रकार इस बैठक में फैसला लिया कि जो लोग भी इस यात्री विमान में मारे गए हैं, उनमें से हर एक के परिवार को किसी प्रकार के भेदभाव के बिना $1.5 लाख दिया जाएगा। ज्ञात रहे कि पिछले वर्ष 8 जनवरी को तेहरान के समीप यूक्रेन का एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 167 यात्री और सेवा दल के 9 कर्मी मारे गए थे। इस विमान में अधिकांश यात्री ईरानी थे, जबकि 32 यात्री कनाडा, अफगानिस्तान, यूक्रेन, ब्रिटेन और स्वीडन के थे। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ईरानी वैज्ञानिक की हत्या में जानी शासन का हाथ है। रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातमी ने ईरान के महान परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या में विदेशी एजेंसियों के हस्तक्षेप व भूमिका की ओर संकेत करते हुए कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आतंकवाद से मुकाबले के लिए दोहरा मापदंड छोड़ देने की जरूरत है। रक्षा मंत्री ने विश्व के 60 से अधिक देशों के अपने समकक्षों के नाम पत्र भेजकर कहा है कि मौजूद प्रमाण इस बात के सूचक हैं कि ईरानी वैज्ञानिक की हत्या में जानी शासन का हाथ है, और विश्व समुदाय का आह्वान किया है कि वो इस अमानवीय अपराध की भर्त्सना करे। ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातमी ने शहीद मोहसिन फखरीजादे के प्रयासों, विशेषकर कोरोना से मुकाबले हेतु उनकी उपलब्धियों की ओर संकेत करते हुए कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान आतंकवाद की भेंट चढ़ने वाला एक देश है, और गत 4 दशकों के दौरान 17,000 ईरानी नागरिक और इस देश के वरिष्ठ अधिकारी आतंकवादी हमलों में शहीद हो गए। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस कार्य व हमले पर मौन उसकी पुनरावृत्ति और विश्व के अधिक असुरक्षित होने का कारण बनेगा। इसी प्रकार उन्होंने ईरान के महान परमाणु वैज्ञानिक की हत्या का आदेश देने वालों और हत्या करने वालों को दंडित किए जाने पर भी बल दिया और कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान इस अपराध का जवाब देने में अपने कानूनी अधिकार को सुरक्षित समझता है। ज्ञात रहे कि ईरान के महान परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे को राजधानी तेहरान के समीप 17 नवंबर वर्ष 2020 को शहीद कर दिया गया था। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरानी राजदूत ने बल देकर कहा है कि अगर परमाणु समझौते के सभी पक्ष अपने वचनों पर अमल करेंगे तो तेहरान पहली वाली हालत में दोबारा लौट आएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरानी राजदूत मजीद तख्त रवानची ने मंगलवार को अपने ट्वीट के जरिए ये सूचना दी कि वे अभी तेहरान में हैं और जनवरी महीने के मध्य तक न्यूयॉर्क वापस लौट जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में कि जब ईरान ने 20% यूरेनियम का संवर्धन दोबारा आरंभ कर दिया है, अगर परमाणु समझौते के सभी पक्ष अपने दायित्वों पर पूरी तरह अमल करते हैं तो ईरान पहले वाली स्थिति में दोबारा लौट आएगा। इसी तरह तख्त रवानची ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ईरानी सरकार गैर कानूनी अमेरिकी प्रतिबंधों को विफल बनाने के लिए घरेलू क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। IRGC की कुद्स ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर ने इराक में अमेरिका द्वारा हाल ही के दिनों में की गई सैन्य गतिविधियों को भड़काऊ बताते हुए ये चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकियों ने क्षेत्र की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उन्हें पछताना पड़ेगा। इस्लामी क्रांति के संरक्षक बल IRGC की कुद्स ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हजाजी ने क्षेत्र में अमेरिकी सेना की अचानक बढ़ी गतिविधियों की ओर संकेत करते हुए कहा कि इस तरह की भड़काऊ कार्रवाई से पूरा क्षेत्र आग के गोले में बदल जाएगा। उन्होंने प्रतिरोध मोर्चे के बारे में हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह के ताजा बयान का हवाला देते हुए कहा कि ईरान के कुद्स ब्रिगेड का स्टैंड वही है जो सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है। ज्ञात रहे कि हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह ने रविवार के दिन प्रतिरोध मोर्चे के योद्धाओं की शहादत की पहली बरसी के मौके पर अपने एक संबोधन में अमेरिकियों, ज़ानियों और उनके सहयोगियों को संबोधित करते हुए कहा था कि तुम प्रतिरोध के मोर्चे के कमांडरों की हत्या करके खुश न हुआ करो, क्योंकि तुम्हारे इस शर्मनाक और जघन्य अपराध से राष्ट्रों में और अधिक जागरूकता पैदा होती है तथा सत्य की ओर उनका झुकाव और अधिक बढ़ जाता है। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। ईरान की वायु सेना ने ड्रोन विमानों के अभ्यास के दूसरे दिन करार नामक ड्रोन से आज़रख्श मिसाइल फायर किया, जिसने काल्पनिक दुश्मन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद दिया। ईरान की सशस्त्र सेना ने मंगलवार से सिमनान प्रांत में ड्रोन विमानों का सबसे बड़ा और पहला अभ्यास आरंभ किया है। ईरानी सेना ने अभ्यास के दूसरे दिन करार नाम के ड्रोन से हवा में मार करने वाली आज़रख्श मिसाइल फायर की, जिसने हवा में सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को भेद दिया। उल्लेखनीय है कि करार ड्रोन 500 पाउंड के MK-82 बमों से भी लैस है और उसने सफलता से इस युद्धाभ्यास में अपने मिशन को अंजाम दिया। इसी बीच ईरानी सेना के ड्रोन अभ्यास के प्रवक्ता एडमिरल सैयद महमूद मूसी ने कहा है कि आज ड्रोन विमानों के माध्यम से बहुत सूक्ष्म तरीके से ईरानी सीमाओं की निगरानी की जा रही है और इनमें विभिन्न प्रकार के ड्रोन शामिल हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मच्छ इलाके में खनिकों के नृशंस नरसंहार के खिलाफ हजारा समुदाय का प्रदर्शन जारी है। डान अखबार की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय और प्रांतीय अधिकारियों की कोशिशों के बावजूद शिया हजारा समुदाय के लोगों ने शवों को दफन नहीं किया है, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम शवों को तब तक नहीं दफनाएंगे जब तक प्रधानमंत्री इमरान खान खुद आकर परिजनों से नहीं मिलते। उनका कहना है कि मजलूम खनिकों के खून पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर प्रधानमंत्री इमरान खान ने मच्छ में होने वाले आतंकी हमले में अपने प्यारों को खो देने वाले हजारा समुदाय से कहा है कि वो जल्द से जल्द उनके पास आएंगे, लेकिन साथ ही उनसे अपील की है कि शवों को दफन कर दें। ट्विटर पर अपने संदेश में इमरान खान ने लिखा है कि मैं मच्छ में हुई दरिंदगी में अपने प्यारों को खो देने वाले हजारा परिवारों का दोबारा यकीन दिलाता हूं कि मैं खुद आपके दुख और मांगों से अवगत हूं। और अंत में यह समाचार कि अमेरिका के विशेष दूत ने दो दिनों से काबुल में अफगान अधिकारियों व राजनेताओं से भेंट की, परंतु इस देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अमेरिका के विशेष दूत जलमई खलीलजाद से भेंट करने से परहेज किया है। समाचार एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार जलमई खलीलजाद ने ऐसी स्थिति में काबुल की यात्रा की है जब कतर में शांति वार्ता का दूसरा दौर होने वाला है। जलमई खलीलजाद ने अपने दो दिनों में काबुल प्रवास के दौरान अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, विदेश मंत्री हनीफ अतमर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्लाह मुहिब सहित कई अफगान अधिकारियों से भेंट वार्ता की है। तो श्रोताओ, इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम लेकर मोहम्मद अली कुम्मी हाजिर है। चर्चा के विषय हैं ईरानी सेना का ड्रोन अभ्यास, डिटरेंट शक्ति और ड्रोन क्षेत्र में ताकत का प्रदर्शन। बुधवार की रात को अमरीकी सेनेट में इलेक्ट्रल कॉलेज के वोटों की गिनती, ट्रंप का आखिरी दांव, नेतन्याहू का अरब देशों के साथ संबंध बनाने का पैंतरा नाकाम और भारत प्रशासित कश्मीर में भारी हिमपात, श्रीनगर जम्मू मार्ग पर हजारों गाड़ियां फंसी। चर्चा में पहले, मंगलवार को सिमनान में ईरानी सेना के ड्रोन अभ्यास पर पेश है एक समीक्षा, साथी सैयद मिसम की जबानी।
ईरानी सेना की ओर से ड्रोन विमान का अभ्यास देश की रक्षा व सुरक्षा को किसी भी तरह के खतरे से निपटने में सशस्त्र बल की पूरी तरह तैयारी का सूचक है। ईरानी सेना का पहला ड्रोन अभ्यास मंगलवार को सिमनान में शुरू हुआ, जिसमें सेना की चारों इकाइयों के सैकड़ों ड्रोन शामिल हुए। इस ड्रोन अभ्यास में हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल से हवाई लक्ष्य के ध्वस्त करने और हवा में दुश्मन के लक्ष्य इंटरसेप्ट करने वाले ड्रोन, सटीक निशाना भेद कर खुद को ध्वस्त करने वाले ड्रोन शामिल हुए। ईरान के रक्षा उद्योग की एक उपलब्धि आधुनिक ड्रोन की डिजाइन व निर्माण है। ड्रोन ऐसा निर्णायक हथियार है जो जंग के मैदान में प्रभावी हो सकता है। रडार को चकमा देने वाला शाहिद 171 ड्रोन गाइडेड मिसाइल से हमला करता है। कमान 12 ड्रोन 200 किलोमीटर की रफ्तार से 10 घंटे उड़ान भर सकता है। मुहाजिर और अबाबील ड्रोन लड़ाका ड्रोन हैं जो देश के रक्षा उद्योग की उपलब्धियां हैं। ईरानी ड्रोन हवा से सतह पर मार करने वाले मिसाइल और सटीक लक्ष्य भेदने वाले स्मार्ट बम से लैस हैं। इस क्षमता से जल और थल में स्थिर व गतिशील लक्ष्य भेदना मुमकिन हो गया है। ईरान की ड्रोन ताकत रणनीतिक अहमियत रखती है। कुछ दिन पहले अमरीकी मैगजीन हिल ने एक रिपोर्ट में ड्रोन विमान बनाने में ईरान की महासफलता का जिक्र करते हुए लिखा, ईरान ने न सिर्फ ये कि ड्रोन विमान के इस्तेमाल की क्षमता की नुमाइश की है, बल्कि अमरीकी ड्रोन को ध्वस्त करने में भी सक्षम है। यहां तक कि अमरीकी विमान वाहक पोत की गतिविधियों पर भी निगरानी कर सकता है। 20 जून 2019 को अमेरिका के एक जासूसी विमान को उस वक्त IRGC की एरोस्पेस विंग ने मार गिराया जब वो ड्रोन ईरान की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। ध्वस्त हुए ड्रोन की पहचान ग्लोबल हॉक बताई गई और अमरीकियों ने MQC-4 ड्रोन के ध्वस्त होने की पुष्टि की। ज़ायोनी अखबार यरूशलम पोस्ट ने एक समीक्षात्मक रिपोर्ट में ईरान की विशाल ड्रोन क्षमता की ओर इशारा करते हुए लिखा कि ईरान ऑपरेशनल और जंग के मैदान की प्रौद्योगिकी के तजुर्बे हासिल करके उसे स्वदेशी ड्रोन में अप्लाई कर रहा है। ईरान के सशस्त्र बल के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी ने मंगलवार को इस विशाल अभ्यास के स्थान के मुआयने के दौरान क्षेत्र में अमेरिका की आतंकवादी व अपराधी फोर्स की हालिया गतिविधियों का जिक्र करते हुए कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान किसी भी पड़ोसी देश पर हमले का इरादा नहीं रखता, लेकिन छोटे से छोटे खतरे से निपटने के लिए तैयार है। अगर दुश्मन ने थोड़ी भी गलती की तो उसे सशस्त्र बलों का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। आतंकवादी गुट दाइश के ठिकानों को निशाना बनाने, इराक और सीरिया में आतंकवादियों के सरगनाओं के शिकार के लिए आधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल और अब सेना का ड्रोन विमान का सफल अभ्यास खतरों से निपटने में ईरान के सशस्त्र बल की ताकत को दर्शाता है।
बुधवार की रात को अमरीकी सेनेट में इलेक्ट्रल कॉलेज के वोटों की गिनती होने जा रही है। ट्रंप के इस दांव में भी सफल होने की संभावना करीब शून्य है। पेश है न्यूयॉर्क से कामरान नजफजादे की रिपोर्ट, साथी अख्तर अब्बास की जबानी।
बुधवार की रात को जब अमरीकी सेनेट में मत पेटियों से मुहर लगे हुए मतों को गिनने के लिए निकाला जाएगा, मुमकिन है उपराष्ट्रपति माइक पेंस, जो सीनेट के अध्यक्ष भी हैं, 12 रिपब्लिकन्स के साथ मिलकर चुनावी प्रक्रिया का विरोध करने वालों का खुलकर समर्थन करने लगे। अब तक माइक पेंस के रवैये से नहीं लग रहा है, लेकिन मुमकिन है कि ट्रंप और उनके साथियों की ओर से उन पर दबाव का असर हुआ हो। अलबत्ता उपराष्ट्रपति पेंस का राजनीतिक भविष्य अदालत की नजर में अहमियत रखने वाले किसी सबूत के बिना चुनाव में धांधली के दावे पर अड़े रहने की वजह से खतरे में पड़ जाए, जो 2024 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने की इच्छा रखते हैं। कांग्रेस के बाहर ट्रंप के समर्थक कल फिर से अपने मतों के अंजाम के बारे में सवाल करेंगे। बाइडेन 4 साल उनके भी राष्ट्रपति होंगे। इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की गिनती की बैठक मौजूदा हालात के मद्देनजर लंबी खींच सकती है। आखिरी सवाल यह है कि मतों को बाइडेन से अपने हित में वापस लौटाने के लिए कांग्रेस की बुधवार की बैठक में ट्रंप की जीत का चांस कितना है? बहुत ही कम, करीब कुछ भी नहीं। हालांकि अगर मान भी लिया जाए तो शायद असंभव न हो। न्यूयॉर्क से IRIB के लिए कामरान नजफजादे की रिपोर्ट।
ज़ायोनी प्रधानमंत्री नेतन्याहू का अरब देशों के साथ संबंध बनाने का पैंतरा नाकाम होता दिख रहा है। प्रदर्शन करने वाले भ्रष्टाचार की वजह से उनके खिलाफ अदालती कार्यवाही पर डटे हुए हैं। पेश है फिलिस्तीन से खालिद सबरना की रिपोर्ट, साथ ही कायम रिजवी की जबानी।
لا يعنيهم ما يقدمه رئيس
زائونی پردھان منتری نیتن یاہو کی راجنیتک اپلبدھیاں اتی گرہت فلسطین کے رہنے والوں کے لیے کوئی وشیش اہمیت نہیں رکھتی۔ اتی گرہت فلسطین کے ایک چوتھائی رہنے والے روزگار چاہتے ہیں، نہ کہ عرب دیشوں کے ساتھ سمبندھ۔ وہ اتنے غریب ہیں کہ انہیں کھادیہ پدارتھ اور دواؤں کی ضرورت ہے۔ ان مشکلوں کے ساتھ ساتھ کورونا وائرس کے سنکٹ کی وجہ سے بھی استھتی اور بھی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔
نتنیاہو الملاحق بملفات الفساد
نتنیاہو کے خلاف بھرشٹاچار کا کیس چل رہا ہے، پر وہ عرب دیشوں کے ساتھ سمبندھ سامان کرنے کے راستے سے ویدھتا حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پردرشنوں نے ان کے منتری منڈل میں اتھل پتھل مچا دی ہے۔
والاسرائیلیون لا يريدون التنازل عن
اتی گرہت فلسطین میں رہنے والے نتنیاہو کے خلاف عدالتی کاروائی سے کم پر تیار نہیں ہیں، جن کے خلاف بھرشٹاچار کے تین کیس ہیں۔ ان کیسوں میں سب سے بھیانک معاملہ رشوت لینے، نسل پرستی کو بڑھاوا دینے اور ان کی ایوگیتا کے بارے میں ہے۔
هناك اتهامات لنتنیاہو داخلیہ بانه
نتنیاہو کو آنتک استر پر پونجی وادی ارتھویوستھا کو بڑھاوا دینے اور غریب ورگ کو نظر انداز کرنے سہت انیک الزاموں کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ بھرشٹاچار کے معاملے کی وجہ سے بھڑکے جنا کروش کے بیچ ایک گٹ ایسا ہے جو انہیں ستہ سے ہٹانا چاہتا ہے۔
لا كل الانجازات ولا
فارس کی کھاڑی کے عرب دیشوں کے ساتھ سمبندھ سامان کرنے کی نتنیاہو کی کوشش پردرشن رہے زانیونیوں کو سنتشٹ بالکل بھی نہیں کر پا رہی ہے۔ فلسطین سے آئی آر آئی بی کے لیے خالد صبرنا کی رپورٹ۔
اور اب بھارت کا رخ کرتے ہیں۔ بھارت پرشاست کشمیر میں 30 سال کا ہمپات کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ لگاتار چوتھے دن گھاٹی کا دنیا سے زمینی و ہوائی سمپرک کٹا رہا۔ پیش ہے شری نگر سے سپتے محمد حسن کی رپورٹ۔
کشمیر گھاٹی میں باری ہمپات کے کارن آج چوتھے دیوس بھی زمینی اور آسمانی سمپرک دیش اور انیہ وشو کے ساتھ کٹا رہا۔ سری نگر جموں مارگ پر ہزاروں کی سنکھیا میں گاڑیاں اب بھی رکی پڑی ہیں اور پرشاسن کا کہنا ہے کہ وہ روڈ کو صاف کرنے کے لیے ہر سمبھو پریاس کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات الیکھنی ہے کہ موسم وبھاگ کا کہنا ہے کہ 30 ورش کے بعد سری نگر اور سری نگر کے نکٹورتی چھیتروں میں ایسی ہمپات ہوئی ہے۔ ٹورسٹ ڈیسٹنی گلمرگ میں 6 فٹ کے نکٹ برف ریکارڈ کی گئی، جبکہ سری نگر جموں مارگ پر 7 فٹ سے زیادہ برف ریکارڈ کی گئی۔ پرشاسن تمام سڑکوں سے برف ہٹانے کے کاریہ آرمبھ کر چکی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شام گئے تک سری نگر سے تمام ضلعوں کو ملایا جائے گا، پرنتو ابھی استھتی بالکل سامان نہیں ہے۔
اس وقت سنو کلیئرنس ہو رہی ہے اشم فوڈ بریج روڈ،
بجلی کا بریک ڈاؤن بھی ہوا ہے، پرنتو پرشاسن کا کہنا ہے کہ زیادہ تر کھیتروں میں انہوں نے بجلی کو بحال کر دیا ہے۔ اس بیچ سری نگر جموں مارگ پر رکے پڑے مسافروں نے پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا،
میں سری نگر سے آیا، آج مجھے قاضی پور میں 3 دن ہو گیا اور یہاں کوئی موومنٹ نہیں ہے۔ دیکھو یہ اس روڈ کا حال ہے، سب لوگ بےچارے پریشان ہیں، کسی کو کوئی پوچھتا ہی نہیں یہ کہاں سے آیا، کہاں جانا ہے، اس کو کیا کرنا ہے۔ دیکھو بےچارے کتنے لوگ پریشان، جلد سے جلد، اور جس کو کوئی دلچسپی نہیں دے رہا ہے۔
میرا نام شیکھر ہے، میں سری نگر سے جموں جا رہا تھا، 3 دن سے یہاں پھنسے ہوئے ہیں، بازار بھی بند ہے، بہت دقت ہو رہی ہے جانا آنا، اور ہم گورنمنٹ کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا نکال دے، ٹورسٹ جو پھنسے ہیں بیچ میں۔
ادھر سری نگر ایڈمنسٹریشن نے کہا ہے کہ جتنے بھی یہاں کے ہاسپٹلز ہیں وہاں سے برف کو کمپلیٹلی ہٹا لیا گیا ہے اور سری نگر کے نکٹورتی چھیتروں کو سری نگر سے جوڑ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام گئے تک تمام چھیتروں کو سری نگر سے جوڑ دیا جائے گا۔ بھاری ہمپات کے کارن 2 ویکتی ہتات ہوئے ہیں، جبکہ کئی لوگوں کے گائل ہونے کے بھی سماچار ہیں، جبکہ کئی مکانوں کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا ہے۔ موسم وبھاگ نے کہا ہے کہ اب اگلے 24 گھنٹوں تک کوئی ہمپات کے آثار نہیں ہیں، پرنتو اب بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو پہاڑی چھیتر ہیں وہاں پر برفانی تودے گر آ سکتے ہیں، لہذا لوگ سیم سے کام لیں۔ سپتو محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
اور اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا یہ کاریکرم یہیں پر سماپت ہوا۔ یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔ اب پیش ہے پروگرام شوریہ گاتھا، جس کے بعد آپ سنیں گے سبھا کا آخری پروگرام آج کل۔
शौर्य गाथा।
दोस्तों, कार्यक्रम शौर्य गाथा की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है मरियम मेहर दादी और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। इस कड़ी में करबला एक सैन्य ऑपरेशन में इराकी सेना की हार और मेरा शहर के उसके हाथ से निकलने के बाद के हालात और इराकी बासी सेना की कार्रवाई के बारे में बताएंगे।
मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कार्यक्रम शौर्य गाथा में 1980 के दशक में ईरान पर इराक के सद्दाम शासन के हमले के मुकाबले में ईरानी राष्ट्र की पवित्र प्रतिरक्षा और इस दौरान ईरानी राष्ट्र के वीर सपूतों के शौर्य के बारे में आपको बताते आ रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में करबला एक ऑपरेशन और फाओ शहर पर नियंत्रण के बारे में हमने आपको बताया था। वलफज्र 8 सैन्य ऑपरेशन और रणनीतिक नज़र से अहम फाओ शहर पर नियंत्रण की वजह से सैन्य राजनीतिक संतुलन ईरान के हित में मुड़ गया था, जिसके बाद इराक के बासी शासन ने नई रणनीति अपनाई। इराक के बासी शासन ने ज़मीनी मोर्चे को सक्रिय बनाने की कोशिश की और आक्रामक मुद्रा अपनाई और इस रणनीति को मेहरान पर नियंत्रण होने के बाद गतिशील रक्षा रणनीति का नाम दिया।
मेहरान पर इराकी फोर्स के कब्जे के बाद इराक के सद्दाम शासन के फाओ के बदले मेहरान की आजादी के ऐलान की खबर को एक विदेशी न्यूज केंद्र प्रसारित करते हुए
इराक در هفته های اخیر تاکتیک خود را تغییر داده و با حمله به داخل خاک ایران نقاطی را به اشغال درآورده و ایران داشته است که حاضر است نشان را با فاو مبادله کند।
उस वक्त इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा खामेनाई ने इराक की ओर से फाओ के बदले मेहरान की आज़ादी के प्रस्ताव पर तेहरान में जुमे की नमाज में कहा था,
मेहरान दर मुकाबले फाओ अज खंद आवरतरीन हर्फ हाई के अफराद आशना व कसानी के मुत्तले हस्तन के मेहरान चिये व फाओ चिये बराशुन वागान इन हर्फ खंद आवर।
फाओ के बदले में मेहरान की आज़ादी की बात हास्यास्पद बात है। जानकार लोग जानते हैं कि मेहरान क्या है और फाओ क्या है।
करबला एक ऑपरेशन की सफलता ने इराकी गतिशील रक्षा रणनीति पर लगाम लगा दी और ये ऑपरेशन ईरानी फोर्सेस के लिए सीमित स्तर पर ऑपरेशन करने के लिए प्रेरणा बिंदु साबित हुआ। सद्दाम शासन की आक्रामक नीति को प्रभावहीन बनाना मुख्य लक्ष्य था, जिसे ईरानी वीरों ने करबला एक ऑपरेशन और मेहरान शहर को आज़ाद करने के दौरान हासिल किया। ऑपरेशन में तेजी, उसकी उपलब्धियों की रक्षा, दुश्मन को धोखा देना, ऑपरेशन के मुताबिक फोर्सेस की तैनाती और इंजीनियरिंग की जरूरी कार्रवाई इस ऑपरेशन के प्रभावी तत्व थे। करबला एक ऑपरेशन में मरने व घायल होने वाले इराकी फौजियों की तादाद 10,000 थी, जबकि 1,210 इराकी फौजी गिरफ्तार हुए थे। जबकि इस ऑपरेशन के दौरान 110 टैंक व आर्म्ड पर्सनल कैरियर और बड़ी तादाद में फौजी साजों, सामान व गाड़ियां तबाह हुईं और 69 टैंक व आर्म पर्सनल कैरियर, 8 इंजीनियर मशीन, 61 सैन्य उपकरण और 64 गाड़ियां ईरानी फोर्सेस के हाथ लगीं।
मेहरान शहर की दीवारों पर जगह जगह लिखा हुआ था, मेहरान आज़ाद हुआ, इमाम खुश हुए।
मेहरान पर ईरानी फोर्सेस की फतह के बाद इस शहर में दाखिल होने की खबर ईरानी प्रसारण केंद्र से प्रसारित होते हुए,
हम वतनों अर्जमान तवज्जो फरमाई, मेहरान कहरमान आज़ाद शुड।
इंजा मेहरान है, मैं अजाद मजदूरान गिरफ्तारी, मैं बराय परचम इस्लाम जंगी, ला इलाहा इल्लल्लाह।
विदेशी टीकाकारों को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि बड़े पैमाने पर प्रचार के बावजूद मेहरान शहर इराक के हाथ से निकल जाएगा। लंदन स्थित स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि मेहरान ऑपरेशन से जो हालात बने हैं उसकी समीक्षा बहुत ज़रूरी है। इस ऑपरेशन के दौरान इराकी सेना के बड़ी तादाद में सैन्य अधिकारी व कमांडर कैदी बने थे, जिनमें ब्रिगेडियर रैंक के कमांडर भी शामिल थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में सैन्य टीकाकारों का मानना था कि ये गिरफ्तारी इराकी सेना के जवानों और बड़े सैन्य अधिकारियों में जंग जारी रखने में रुचि न होने और ईरानी सेना के सामने दृढ़ता को निरर्थक समझने की वजह से हुई है। तत्कालीन इराकी विदेश मंत्री व उप प्रधानमंत्री तारिक अजीज ने मेहरान में हार के बारे में अपने इंटरव्यू में कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस लज्जाजनक हार का पत्रकारों के सामने कैसे औचित्य पेश किया जाए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में सिर्फ दुनिया के देशों से ईरान को नज़रअंदाज करने, तेहरान को हथियार व विशेषज्ञों की मदद न देने की अपील की, ताकि इस तरह तेहरान को जंग खत्म करने और क्षेत्र में शांति की ओर लौटने के लिए मजबूर किया जा सके।
ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने उस वक्त लिखा था कि इराक 2500 फौजियों के मारे जाने के साथ ही मेहरान शहर से पीछे हट गया है। 6 हफ्ते पहले इराक सरकार ने जब मेहरान पर कब्जा किया था तो 21 तोपों की सलामी ली थी और लोगों ने सफलता का सड़कों पर जश्न मनाया था, लेकिन अब खामोशी से जारी हुई विपत्ति के जरिए ये मान रही है कि ईरानी फोर्सेज मेहरान पर नियंत्रण के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पहुँच गई हैं।
फाओ में अपना वर्चस्व बनाए रखना और मेहरान में ऑपरेशन ईरान की सैन्य ताकत में वृद्धि का चिन्ह माना गया। जैसा कि बीबीसी रेडियो ने अपने पत्रकार के हवाले से बताया था कि हालांकि मेहरान पर नियंत्रण जंग के परिणाम को तय करने में निर्णायक नहीं होगा, लेकिन ईरानी फोर्सेस ने यह दिखा दिया कि वे फाओ में अपने मोर्चों की रक्षा के साथ ही इराक के निरंतर हमलों के मुकाबले में इराकी फोर्सेस को केंद्रीय मोर्चे से खदेड़ने की क्षमता रखती हैं।
मेहरान को दोबारा हासिल करने और इस मोर्चे पर इराक की बासी सेना की भारी हार के नतीजे में इराकी सेना ने इराक के औद्योगिक केंद्रों व आबादी वाले इलाकों पर हमले शुरू कर दिए। इन हमलों में सैकड़ों की तादाद में आम लोग शहीद व घायल हुए। इसी तरह इन हमलों में ईरान के औद्योगिक केंद्रों को नुकसान पहुंचा। इसके जवाब में ईरान ने बगदाद के औद्योगिक केंद्रों पर मिसाइल मारने का फैसला लिया। अलबत्ता इराकी जनता ने ईरान की जवाबी कार्रवाई के संभावित नुकसान से बचने के लिए सभी आर्थिक व औद्योगिक केंद्रों के आसपास के इलाकों को खाली करने के लिए कहा।
थोपी गई जंग के शुरू में इराकी फाइटर जेट के हमले खार्क द्वीप के इलाके तक सीमित थे, लेकिन फ्रांस सरकार की ओर से इराक की मदद होने से इन हमलों का दायरा फारस की खाड़ी में हुर्मुज स्ट्रेट तक फैल गया। फ्रांस ने इराक को मिराज फाइटर जेट, एंटी शिप मिसाइल और लेजर बम दिए थे, जबकि रूस ने इराक को MiG-25 फाइटर जेट दिए थे। पहली बार इराकी सेना ने मिराज F-1 से 1986 में इस्फहान की रिफाइनरी पर बमबारी की थी। उस वक्त इराकी सेना के पास ऐसे प्लेन नहीं थे जो हवा में फाइटर जेट को ईंधन भर सके और मिराज फाइटर जेट में इस्फहान आकर बमबारी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ईंधन भरने की क्षमता नहीं थी। इसके बावजूद इस्फहान में रिफाइनरी पर हमला इराकी वायुसेना की ताकत में मूल बदलाव का इशारा दे रहा था।
1986 में ईरान के लार्क और सीरी द्वीपों पर इराक के हमले इराकी एयरफोर्स की स्थिति में बुनियादी बदलाव का पता दे रहे थे। इसी तरह यह हमला बता रहा था कि इराकी फोर्सेस ईरान के सुदूर इलाके पर हमले के लिए फारस की खाड़ी के आसमान में अपने फाइटर जेट को ईंधन देने में सक्षम हो चुकी है।
عراق یہ جانتا تھا کہ ایران جنگ کو جاری رکھنے کے لیے صرف تیل کی آئے پر نربھر ہے، اس لیے سن 1986 میں ایران کے تیل کے ٹرمینل، پلیٹ فارم اور تیل ٹینکروں پر ویاپک حملے شروع کر دیے گئے تاکہ ایران کے تیل نریات کو روک دیا جائے۔ اس دوران عراق کا صدام شاسن ترکی اور سعودی عرب تک پائپ لائن کے ذریعے اور جارڈن کے ذریعے تیل بیچتا تھا، اس لیے اسے فارس کی کھاڑی سے تیل بیچنے کی خاص ضرورت نہیں تھی۔ ایسے حالات میں فارس کی کھاڑی میں جنگ کی آگ بھڑکنے سے عراق کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا۔
اسی وجہ سے عراق نے 1986 میں ایران کے تیل ٹینکروں پر حملے تیز کر دیے، جس سے ایران کو زیادہ نقصان ہونے لگا۔ ایک اور عراقی ایئر فورس 1986 میں ایران کے اودیوگک، آرتھک و پیٹرولیم کیندروں پر، تو دوسری اور ہرمز اسٹریٹ تک ایران کے تیل ٹینکروں پر حملے کر رہی تھی۔ ان حملوں میں وہ فرانس کے میراج فائٹر جیٹ و لیزر بم تتھا امریکہ سے سیٹلائٹ سوچنا کی مدد لے رہی تھی، اور اسے فارس کی کھاڑی کے دیشوں کا سہیوگ بھی حاصل تھا۔ 1985 اور 1986 میں عراقی ایئر فورس نے ایران کے تیل ٹینکروں و تیل پرتشٹھانوں پر 120 بار حملے کیے، اور ان حملوں میں 178 لوگ مارے گئے۔
ایران کے تیل پرتشٹھانوں اور تیل کے ٹینکروں پر عراقی ایئر فورس کے حملوں کے نتیجے میں ایران کا تیل نریات کم ہو گیا۔ جنگ کے ختم ہونے تک عراقی سینا نے ایران کے 500 جہازوں پر حملے کیے تھے۔ کچھ تیل ٹینکر کئی بار حملوں کا نشانہ بنے تھے، مثال کے طور پر دینا تیل ٹینکر پر الگ الگ موقعوں پر 6 بار حملے کیے گئے۔ اسی طرح بندر عباس کے قریب کھیتر میں بارسیلونا نامی تیل ٹینکر پر حملہ کیا گیا، جس سے اس پر لدا 200,000 ٹن تیل جل کر دھواں بن گیا۔
عراقی سینا نے فارس کی کھاڑی میں سب سے پہلے تیل کے کنوؤں پر حملے کیے، اس کے بعد جل تھل میں آئل رگ پر حملے شروع کیے، پھر تیل کے پلیٹ فارموں اور پھر تیل کی جیٹیوں پر حملے کیے۔ اس طرح عراقی سینا زمین پر اپنی ہار کی بھرپائی کی کوشش کرتی رہی۔ یہ نیتی شروع میں کچھ حد تک کامیاب رہی، کیونکہ اس کے نتیجے میں ایران کی تیل کی آئے کا بڑا بھاگ ہاتھ سے نکل گیا، اور ایران کے تیل کی قیمت کرانتی کے بعد سب سے کم استر تک گر گئی۔ لیکن ایرانی ویروں کے جی توڑ پرتیرودھ کے نتیجے میں ایران کی جیت کی پرکریا جاری رہی، اور عراق کے باسی شاسن، خاص طور پر صدام کو ایران کے ساتھ جنگ شروع کرنے کی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ تو دوستو، کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، انومتی دیجیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران، سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کاریکرم۔ آج کل
دوستوں، کارکرم آج کل کو لے کر اپستھت ہیں سواتی اور محمد علی کمی کا سلام سویکار کریں۔ عراق کے بارے میں امریکی یوجنا آئی لیب کے سمبندھ میں چرچا کریں گے۔
دوستوں، پچھلے پروگرام میں ہم بتا چکے ہیں کہ عراقی یوواؤں کے برین واش کے ادیش سے امریکہ نے آئی لیب نامک ایک کاریکرم آرمبھ کیا ہے۔ امریکہ نے آئی لیب ارتھات عراقی ینگ لیڈرز एक्सचेंज प्रोग्राम नाम के कार्यक्रम को इराकियों के लिए तैयार किया है। बगदाद में स्थित अमरीकी दूतावास की ओर से इसे इराक में लागू किया जा रहा है।
इराक पर हमला करने के बाद इराक में अपनी रणनीति को खतरे में पड़ता देखकर अमेरिका और उसके स्ट्रेटेजिक घटकों ने इस देश में अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति के अंतर्गत यह नई योजना तैयार की, जिसके अंतर्गत वे इराक युद्ध से बिगड़ी अपनी छवि को सुधारने के साथ ही इराक में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं। इस योजना का नाम है आईलैब, अर्थात इराकी यंग लीडर्स एक्सचेंज प्रोग्राम। अमेरिकी दृष्टिकोण के हिसाब से इराक में उसके दृष्टिगत उच्च शिक्षा इराकी समाज को आधुनिक बनाने के प्रयासों के लिए अनिवार्य है। उनके हिसाब से इराक के विश्वविद्यालयों में सामाजिक मामलों और राजनीतिक तनाव को कम करने की क्षमता पाई जाती है,
इसीलिए वे इराकी यूनिवर्सिटियों और विद्यार्थियों के लिए अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि वे समाज के भीतर अमरीका के मद्देनजर बदलाव ला सकें। सन 2003 के बाद से अमरीकी अपने प्रचारों में कह रहे हैं कि इराक के शिक्षा केंद्र और विश्वविद्यालय इराक में शांति एवं स्थिरता में प्रभावी रोल अदा कर सकते हैं। इराक में शिक्षा विभाग को बड़े पैमाने पर बजट की कमी का सामना रहा है। इस देश में अमेरिका के हमले के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इराक के शिक्षा विभाग को कम से कम $1,200,000,000 की फौरन जरूरत है।
मैड्रिड में सन 2003 में इराक के पुनर्निर्माण के कॉन्फ्रेंस में इस देश के शिक्षा विभाग के लिए किसी प्रकार का कोई बजट विशेष नहीं किया गया था। मार्च सन 2004 में जब अमेरिकी कांग्रेस ने इराक के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से जो भारी भरकम बजट विशेष किया था, उस समय सीएपी गठबंधन के अस्थायी अधिकारी ने इराक के शिक्षा विभाग के लिए $8,000,000 हासिल किए थे। विशेष बात यह है कि अमेरिका ने इराक के पुनर्निर्माण के बजाय इस देश के विश्वविद्यालयों की ओर अधिक ध्यान आकर्षित कर रखा है।
अमेरिका की USAID अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने सन 2003 में ऐलान किया था कि अमेरिका और इराक की शिक्षा संस्थाओं को निकट लाने के लिए $22,000,000 की जरूरत होगी। USAID के मुताबिक यह रकम इराकी छात्रवृत्ति से विशेष की जाएगी। इराक में सांस्कृतिक दृश्य से प्रभाव बनाने के लिए जिस योजना के अंतर्गत काम किया जा रहा है वो है YGL अर्थात यंग ग्लोबल लीडर्स। YGL ने वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच के अंतर्गत काम करना शुरू किया।
प्रोफेसर क्लाउड एम श्वाब ने जनवरी सन 1971 में विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की। क्लाउड श्वाब ने 1998 में अपनी पत्नी के साथ सामाजिक कार्यों के उद्देश्य से एक संस्था का गठन किया। विश्व आर्थिक मंच के समानांतर क्लाउड श्वाब की यह संस्था विभिन्न देशों के पूंजीपतियों का समर्थन करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच ने जायोनियों की नीतियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की संस्थाओं और इन संस्थाओं के बीच चैनल बना रखा है। इनमें से प्रत्येक विशेष क्षेत्र में अपना काम करती रहती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यंग लीडर्स एक्सचेंज प्रोग्राम है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। इसके बजट को जायोनियों ने उपलब्ध कराया है।
क्लाउड श्वाब को सन 2004 में विश्व में सुधार के अगुवा के रूप में इसराइल के बिन डेविड इसराइल नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ उसको $1,000,000 की राशि का नगद इनाम भी दिया गया। क्लाउड श्वाब ने यह राशि यंग लीडर्स एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए विशेष कर दी। भौगोलिक दृष्टि से यंग लीडर्स एक्सचेंज प्रोग्राम के सदस्य पूर्व एशिया, यूरोप, रूस, कॉकेशिया, चीन, लैटिन अमरीका, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमरीका, दक्षिणी एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में फैले हुए हैं।
इस संगठन की गतिविधियां कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जैसे क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का उचित समाधान ढूंढना, व्यक्तिगत रूप में किसी उद्देश्य को हासिल करने के बजाय प्रतिभाशाली लोगों के साथ मिलकर यह काम करना और युवाओं के भीतर वैश्विक मुद्दों को बेहतर समझने की योग्यता पैदा करना आदि। प्रोफेसर क्लाउड एम श्वाब ने अपने संगठन की सदस्यता हासिल करने वालों के लिए कुछ शर्तों का निर्धारण किया है। उसकी एक शर्त यह है कि सदस्यता लेने वालों को अपने देश में लोकप्रिय होना चाहिए, व्यापार के क्षेत्र में उसकी अच्छी समझ होनी चाहिए, वैश्विक मामलों की जानकारी होने के साथ ही उसे एक प्रतिबद्ध व्यक्ति होना चाहिए, उसने कोई महत्वपूर्ण आविष्कार भी किया हो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में उसने प्रबंधक के पद तक की जिम्मेदारी संभाली हो या उनकी कुछ राजनीतिक गतिविधियां रही हो।
सदस्यता हासिल करने वाले की उम्र 40 वर्ष तक होनी चाहिए। इस संस्था की सदस्यता के लिए पंजीकरण पूरा होने के बाद 12 लोगों पर आधारित एक टीम उसके बारे में अपना निर्णय लेगी, जिसमें 6 वर्षों तक का समय लग सकता है। संस्था की ओर से हर साल नए सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की जाती है ताकि उनको इस नेटवर्क के कामों से सूचित किया जा सके। इस वार्षिक बैठक में उनको जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। अपने गठन के आरंभिक समय में ही यंग लीडर एक्सचेंज प्रोग्राम संस्था में पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के जाने माने लोगों ने सदस्यता हासिल की, जिनमें प्रमुख अर्थशास्त्री, सोशल एक्टिविस्ट, मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार भी शामिल थे।
YGL अर्थात यंग ग्लोबल लीडर नामक यह संस्था पश्चिम एशिया को विशेष महत्व देती है, जो मिस्टर मेरोस्लाव डेस्क के अधीन काम कर रही है। वे चेकोस्लोवाकिया और इराक में अमेरिकी दूतावास में काम कर चुके हैं। वे इन देशों में अमेरिका की सांस्कृतिक परियोजना को लागू करने में व्यस्त हैं। बगदाद में वे अमेरिकी दूतावास में मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा दस्तावेज के एक भाग में कहा गया है कि हम लोकतंत्र और मानवाधिकारों की सुरक्षा, भ्रष्टाचार से लड़ने और स्वतंत्र सरकारों के समर्थन के प्रति कटिबद्ध हैं। इसी के साथ हम 21वीं शताब्दी में परिवर्तन लाने में सक्षम युवाओं के साथ खड़े हैं। इसके दूसरे भाग में कहा गया है कि वैश्विक संबंधों के निर्माण, भविष्य के नेताओं की पहचान, युवाओं के कौशल की तलाश और इस कौशल को समाजों से जोड़ने की पहल कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने YGL के कार्यक्रम को लागू करने का बीड़ा उठाया है।
अमरीकी विदेश मंत्रालय में YGL के जिम्मेदार एंडी रेबेंस हैं। इस पद पर आसीन होने से पहले एंडी रेबेंस अमरीकी विदेश मंत्रालय में मध्य पूर्व, जायुनी शासन और फिलिस्तीनी मामलों के प्रभारी रह चुके हैं। सन 2011 में YGL के संस्थापक क्लाउड एम श्वाब ने अपनी पत्नी के साथ सन 2011 में जवानों के लिए एक अन्य चैनल की आधारशिला रखी। इसकी शाखाएं दुनिया के महानगरों में खोली गई हैं। पूरी दुनिया में अब तक इसकी 200 शाखाएं खोली जा चुकी हैं।
दूसरी वास्तविकता है कि क्षेत्रीय देशों में अमेरिका का हस्तक्षेप जहां पर दाइश सहित आतंकवादी गुटों के खुले समर्थन का कारण बना है, वहीं पर क्षेत्रीय देशों पर इसके बुरे सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़े हैं। अमेरिका ने आईलैप, इराकी यंग लीडर्स एक्सचेंज प्रोग्राम नाम के एक कार्यक्रम को इराकियों के लिए तैयार किया है। इस कार्यक्रम ने इराकी अधिकारियों को चिंतित कर रखा है। उनका मानना है कि इसमें भाग लेने वाले युवा नैतिक मूल्यों से हाथ धो बैठेंगे। वे मानते हैं कि अपनी संस्कृति से दूर होने के कारण देश के युवा सही रास्ते से भटक सकते हैं। यही कारण है कि वे इसके उद्देश्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत दें।
یہ تہران ہے اسلامی گنتنت ایران کی آواز۔ شوتاو ابھی آپ سن رہے تھے کاریکرم آج کل، اور اب سنیں مکھیہ سماچاروں کے سارانش کا۔ راشٹرپتی نے کہا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ آرتھک پرتیبندھ لگا کر وہ ایرانی راشٹر کو گھٹنے ٹیکنے پر بات کر دے گا۔ راشٹرپتی ڈاکٹر حسن روحانی نے نکٹ بھوش میں جو بائیڈن کی سرکار کی گتیویدھیوں کے آرمبھ ہونے کی اور سنکیت کیا، اور کہا کہ اگر جو بائیڈن نے اپنے وچنوں کا پالن کیا تو ایران کا جواب اسپشٹ ہے۔ رکشا منتری نے کہا ہے کہ ایرانی ویگیانک کی ہتیا میں زامی شاسن کا ہاتھ ہے۔ رکشا منتری بریگیڈیئر جنرل امیر ہاتھوی نے ایران کے مہان پرمانو ویگیانک محسن فخری زادے کی ہتیا میں ودیشی ایجنسیوں کے ہستکشیپ و بھومکا کی اور سنکیت کرتے ہوئے کہا کہ اس بات میں کوئی سندیہ نہیں ہے کہ آتنکواد سے مقابلے کے لیے دوہرا ماپدنڈ چھوڑ دینے کی ضرورت ہے۔ سنیوکت راشٹر سنگھ میں ایرانی راجدوت نے بل دے کر کہا ہے کہ اگر پرمانو سمجھوتے کے سبھی پکش اپنے وچنوں پر عمل کریں گے تو تہران پہلی والی حالت میں دوبارہ لوٹ آئے گا۔ آئی آر جی سی کی قدس بریگیڈ کے ڈپٹی کمانڈر نے عراق میں امریکہ دوارا حال کے دنوں میں کی گئی سینیہ گتیویدھیوں کو بھڑکاؤ بتاتے ہوئے یہ چیتاونی دی ہے کہ اگر امریکیوں نے چھیتر کی سرکشا سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تو انہیں پچھتانا پڑے گا۔ ایران کی وایو سینا نے ڈرون ابھیاسوں کے دوران دوسرے دن کرار نامہ کے ڈرون سے آزرخش میزائل فائر کیا، جس نے کالپنک دشمن کے لکش کو سفلتا پوروک بھید دیا۔ پاکستان کے بلوچستان پرانت کے مچھ علاقے میں کھنکوں کے نشنس نرسنہار کے خلاف ہزارہ سمدائے کا پردرشن جاری ہے۔ تو شوتاو، اسی کے ساتھ ہمارا یہ کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ آپ سے ودا چاہتے ہیں، خدا حافظ۔ Thank you.